अगली सुबह आनिया एकदम फ्रेश महसूस कर रही थी। कल रात उसने अन्वय को जमकर सुनाया था और अब वही बातें याद करके वो मुस्करा रही थी। वो उठकर दर्पण के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, आबाई का मजा बहुत अकड़ दिखाता है। मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी तो बहुत भाव खा रहा था ना, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गया था। आप देखो बच्चू मैं क्या करती हूँ, बड़े मुश्किल से हाथ आए हो, यूं ही जाने तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। मुझे अपने पीछे खूब भगाया है तुमने, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओगे और मैं तुम्हें जमकर नचाऊंगी अपने पीछे। तुम्हारे दिल की बात अगर मैंने तुम्हारी जुबान पर नहीं ला दी तो मेरा नाम भी आनिया नहीं। उसने खुद को फ्लाइंग किस दी और फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं अन्वय आनिया की रात की बातों के कारण कुछ परेशान था। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर वो नीचे आया, ये सोचकर कि शायद आनिया दिख जाए और उससे बात कर सके। पर आनिया ने कमरे में ही नाश्ता कर लिया था। उसके बाद वो जूली के साथ नीचे जाकर गार्डन में बैठ गई। अन्वय वहां से गुजरा तो उसकी निगाहें आनिया पर पड़ी। आनिया ने भी निगाहें उठाकर एक नज़र उसे देखा, फिर नाराजगी से मुंह फेर लिया। अन्वय भी वहां से चला गया। शाम को आनिया अनामिका जी के साथ बैठी हुई थी, उनसे बात कर रही थी और खुश लग रही थी। सब जानते थे कि उसकी ये मुस्कान अन्वय के लौटने के कारण है। अन्वय वहां से गुजर रहा था तो अनामिका जी ने उसे अपने पास बुला लिया और उससे सुरक्षा के विषय में बात करने लगी। अन्वय जवाब देता गया पर उसकी निगाहें लगातार आनिया पर बनी रहीं, जो उसे देख भी नहीं रही थी। कुछ देर बाद आनिया आराम करने का कहकर वहां से उठकर चली गई। अन्वय की आज की रात भी बेचैनी से कटी। आनिया का ध्यान हमेशा उसे मिलता था और अब वही उसे नज़रअंदाज करने में लगी हुई थी। यही अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन वो थोड़ा व्यस्त था। शाम को वो बाहर गार्डन में खड़ा जैक के साथ कुछ बात कर रहा था, तभी वहां आनिया जूली के साथ पहुंची। पर उसने अन्वय को नज़रअंदाज कर दिया और जैक को देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो, उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आए। इतनी भी भयंकर नहीं दिखती मैं कि तुम एक बार मुझे देखकर डर गए और दोबारा मेरे सामने ही नहीं आए। उसकी बात सुनकर जहां जैक और जूली हैरानी से उसे देखने लगे, वहीं अन्वय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अन्वय की चालाकियां बहुत अच्छे से समझ रहा था। आनिया ने तिरछी निगाहों से उसे देखा, फिर जैक को देखकर बोली, लगता है यहां कुछ लोगों को मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं आ रहा। मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी। उसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूं, फिर जितनी बात करनी हो कर लेना, अन्वय ने उसे घूरते हुए कहा और गुस्से में वहां से चला गया। आनिया के लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने जैक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी यार, तुम्हारे खड़ूस मास्टर को थोड़ा परेशान करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, बुरा मत मानना। जैक ने उसे अजीब निगाहों से घूरा और वहां से चला गया। तो आनिया उसे देखकर मन ही मन बोली, जैसा मालिक वैसे ही चेले, चपटे रखे हुए हैं, सबके सब आंखों से ऐसे घूरते हैं जैसे कच्चा ही निकल जाएंगे। आनिया अन्वय के बारे में सोचकर मुंह बनाने लगी। जूली, जो इतनी देर से सब हैरानी से देख रही थी, उसने आनिया को देखकर सवाल किया, मिस आनिया, आप मास्टर अन्वय को नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? कभी कभी अपने दर्द को किसी को महसूस करवाने के लिए उसे उस दर्द को देना पड़ता है, तब उसको दूसरों की तकलीफ समझ आती है, आनिया ने गंभीरता से कहा और अंदर चली गई। जूली को कुछ समझ नहीं आया, वो भी उसके पीछे चली गई। आनिया कमरे में पहुंची पर खाली बैठे बोर हो रही थी। उसने बाहर जाकर जूली को कुछ कहा और मुस्कुराकर वापस अंदर आ गई। जूली अन्वय के कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अन्वय की आवाज़ आई, आ जाओ अंदर। जूली अब दो कदम अंदर आ गई। अन्वय ने निगाहें उठाकर उसे देखा और आंखों से ही सवाल किया, तो जूली ने सर झुकाकर कहा, मिस आनिया ने अपने पढ़ने के लिए बुक्स मंगवाई हैं। उसने जैसे ही इतना कहा, अन्वय की आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गई। उसने हल्के गुस्से से कहा, जिसे बुक चाहिए उसे कहो आकर खुद ले जाए। जूली सर झुकाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही वो आनिया के सामने खड़ी थी और उसने अन्वय की बातों से बता दी थी, जिस वजह से अब आनिया आंखें छोटी छोटी करके उसे घूर रही थी। वो कुछ देर खामोशी से अन्वय की बात को याद करके अपना खून जलाती रही, फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं खुद ही लेकर आऊंगी, चलो तुम मेरे साथ। वो जूली के साथ वहां से चली गई। अन्वय कमरे में यहां से वहां टहलते हुए उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और आनिया ने अंदर कदम रखा तो अन्वय के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने उसके तरफ कदम बढ़ाया, तभी जूली भी अंदर आई। ये देखकर अन्वय के भाव सख्त हो गए। जूली आनिया के पीछे पीछे चलती, वहीं आनिया अन्वय को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए बुकशेल्फ की तरफ आ गई। उसने कुछ देर देखने के बाद कुछ बुक्स ली और जाने लगी, पर अन्वय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके हाथ से बुक्स ली और जूली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लेकर बाहर जाओ, मुझे आनिया से अकेले में बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आनिया ने आकरते हुए कहा और जाने लगी, पर अन्वय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। उसकी घूरती निगाहें जूली की तरफ घूमी तो वह जल्दी से बुक्स लेकर बाहर चली गई। अब अन्वय ने आनिया की तरफ निगाहें घुमाई, आनिया उसे घूर रही थी। अन्वय ने भी उसे घूरते हुए गुस्से से पर संयमित आवाज में कहा, करना क्या चाहती हो तुम? मैं भला क्या कर सकती हूँ, कैदी हूँ तुम्हारी,
जैसे तुम चाहते हो वैसे ही जी रही हूँ, आन्या ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। अन्वय ने अब उसकी तरफ एक कदम लेते हुए फिर से कहा, कैदी नहीं हो तुम मेरी, तो क्या हूं मैं तुम्हारी? आन्या ने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए गंभीरता से सवाल किया। अन्वय उसके सवाल पर खामोश रह गया तो आन्या के लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी कलाई पर से उसके हाथ को हटाते हुए कहा, नहीं है ना जवाब, तो तुम्हें अब मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है और ना ही मुझे छूने का अधिकार दिया है मैंने तुम्हें। आन्या की बातों में अब गुस्सा झलक रहा था। उसने अन्वय से अपनी कलाई छुड़ानी चाही पर अन्वय ने उसे और भी कसके थामते हुए सवाल किया, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो तुम? करना क्या चाहती हो?